प्यारे जब से मिलन मनाने के।
ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के भाग्यवान बच्चे कितनी ऊंची पालना में पल रहे हैं, कैसी श्रेष्ठ पालना ईश्वरीय पालना हम सबको मिल रही है। आज इसी अनुभव के आधार से कुछ एक बातें आपके सामने रखूंगा। संगम पर मीठे बाबा ने हम सबको चुन करके एक सुंदर बगीचे में खुशबूदार फूल बनाया है, ऐसी श्रेष्ठ पालना दी है। जैसे माली बीज बोता है, पौधे की संभाल करता है और उसमें निकलने वाले फूल फल उनकी सुरक्षा करता है, उन्हें पालता है, बड़ा करता है, खाने योग्य बनाता है। हम सभी को मीठे बाबा ने नया अलौकिक जन्म दिया, जो हम सभी स्वयं को, स्वयं के पिता को, घर को, श्रेष्ठ कर्मों को भूल चुके थे। नया जन्म दे करके, अलौकिक जन्म दे करके शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण जीवन जो अति श्रेष्ठ जीवन है, जिसके मूल्य को हम सभी जानते हैं। आज तक भी कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए ब्राह्मणों को आगे रखा जाता है। नामधारी ब्राह्मण हम सभी कर्तव्यवाचक, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं, जिनको बाबा ने नया जन्म दिया और जन्म देने के साथ साथ जैसे माँ अपने बच्चे को सवेरे सवेरे स्वच्छ करके अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है, पौष्टिक भोजन खिलाती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बने, शक्तिशाली बने, उसको तैयार करके पढ़ाई के लिए योग्य बनाने के लिए स्कूल भेजती है, उसकी संभाल करती है, संग से बचाती है, पूरा ध्यान रखती है, हर प्रकार से स्वस्थ रहे, समर्थ रहे, संग दोष से बचकर रहे। माता पिता अपने बच्चों की पालना यदि विधि पूर्वक करते हैं तो बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। हमारे अलौकिक माता पिता ने, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, शिव बाबा हमारा बाबा बाप है। माता पिता के रूप में जो हम सबको श्रेष्ठ पालना मिली है, अलौकिक जन्म हुआ, अलौकिक जन्म के साथ साथ सवेरे सवेरे अच्छा अच्छा भोजन बहुत महीन करके, तैयार करके, पौष्टिक बना करके हम सबको मंथन चिंतन करके ब्रह्मा माँ खिलाती है। शिव बाबा के ज्ञान को खुद पहले हजम करके अपने स्वरूप से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से हम सबके सामने रखती है। साथ साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का, तीनों लोकों का, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दे करके, समझदार बना करके, त्रिकालदर्शी बना करके, त्रिनेत्री बना करके इस संसार में चलना सिखाती है। ऐसी श्रेष्ठ पालना जो संगम युग पर हम सबको मिल रही है, एक को नहीं लेकिन जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने दिल से बाबा को कहा मेरा बाबा, जिन्होंने बाबा को पहचाना, जो बाबा की आज्ञाओं पर चलना शुरू किया, उनकी पालना दूर बैठे भी किसी भी कोने में बैठे हुए बच्चे की अव्यक्त रूप में सकाश के द्वारा, सूक्ष्म वाइब्रेशन के द्वारा, साथ साथ अपनी मधुर वाणी के द्वारा श्रेष्ठ संघ की कंपनी दे करके इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बना दिया है, जो हम सभी विश्व के शोकेस में शोपीस की तरह एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से ये आप सभी, हम सभी चुने हुए बाबा के रतन, जिन पर भगवान की नजर पड़ी है, कैसी उनकी पालना हो रही है, कितनी ऊंची मत और कितनी ऊंची श्री मर्यादाएं, श्रेष्ठ मर्यादाएं, कितनी श्रेष्ठ शिक्षाएं हम सबको रोज सुनने को मिलती हैं। ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पर एक जैसी पढ़ाई एक साथ एक ही टाइम पर हर स्थान पर होती हो। हमारा इस विद्यालय की एक विशेषता रही है, 10 वर्षों से करीब प्रयास किया गया कि जो मधुबन में मुरली चलती है, जिस प्रकार मधुबन में कार्यक्रम होते हैं, विश्व के किसी भी कोने में एक साथ एक जैसे महावाक्य सुनाए जाएं, चाहे वो किसी भाषा में हो, बहुत अच्छा सफल प्रयास है जो मधुबन में हम सब सुनते हैं। सवेरे सवेरे जिस प्रकार की दिनचर्या मधुबन की रहती है, हर विश्व के कोने की ब्राह्मण आत्मा को वही श्रेष्ठ पालना, वही मीठी शिक्षाएं, उसी प्रकार की गाइडेंस रोज दी जाती हैं, एक जैसी पढ़ाई है हर एक के लिए। जो बाबा का बच्चा बना उसके लिए एक जैसी मर्यादाएं हैं, ऐसे नहीं है कोई टीचर्स हैं जैसे वहां पर कोई पृष्ठ हैं, कोई मौलवी हैं, कोई गृहस्थी हैं, उनके लिए अलग अलग कायदे, अलग अलग मर्यादाएं, नियम हो सकते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो मधुबन में है, या टीचर्स हैं सेवा केंद्रों पर, या आप सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अंदर रहते हैं, कोई भी प्रकार के कर्म क्षेत्र पर आपको कर्म करने के लिए सेवा मिली है, हर कर्म क्षेत्र पर बाबा ने हर बच्चे के लिए एक जैसी श्रीमत दी है, एक जैसी मर्यादाएं सुनाई हैं, एक जैसी शिक्षाएं दी हैं। जरा भी बाबा की पढ़ाई में, बाबा की पालना में, बाबा के द्वारा सुनाई हुई श्रीमत और मर्यादाओं में डिफरेंट नहीं है, अंतर नहीं है, सभी को एक जैसी पढ़ाई, पालना, श्रीमत, मर्यादाएं मिल रही हैं। हर एक को पुरुषार्थ का चांस है, हरेक को सेवा का चांस है, हरेक के लिए चार मुख्य सब्जेक्ट हैं पढ़ाई की, और हरेक को विजयमाला में विजयी रतन बनने की, नंबर वन में आने की गोल्डन लॉटरी भी मिल सकती है, डिक्लेयर नहीं है, किसी के लिए भी कोई सीट फिक्स नहीं है। जो जितनी रेस करे, जितना पुरुषार्थ करे, वो नंबर आगे आ सकता है। ऐसा यूनिक विद्यालय, ऐसी यूनिक पढ़ाई और ऐसी पारिवारिक पालना, अद्भुत हम सभी बच्चों को प्राप्त हो रही है। हम अपने भाग्य पर नाज करते हैं, कैसा ऊंचा भाग्य भगवान ने हम सबको दिया है। लोग कभी कभी पूछते हैं, आपने कितनी स्टडी की है, कितनी डिग्री ली है, क्या करते हैं। जब हम लोग कहीं पर प्रवचन देते हैं और किसी क्षेत्र पर कोई कार्य मिलता है बाबा की यज्ञ से, यहाँ से थोड़े दिन पहले एक स्थान पर मेरा जाना हुआ था। आप सबको पता है कि ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्गत बहुत सी सेवाएं इस समय पूरे भारत में हो रही हैं। तो एक सभा के बीच में जहाँ पर बहुत से किसान थे, उनके सामने जब खेती के विषय में प्रवचन करने को मिला और जब उन्हें बताया कि कैसे आप कौन सी प्रकार की खाद यूज करें, किस प्रकार की बीज यूज करें, किस प्रकार से अपने श्रेष्ठ संकल्पों के योग के वाइब्रेशन से खेती करें, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा कृषि अधिकारी बैठा था। जब मेरा प्रवचन पूरा हुआ तो मुझे बोलता है, पूछता है, आपने किस कृषि यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है। तो मेरा कहना था कि मुझे तो भगवान की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया गया है, मैंने तो कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज देखा नहीं है। बचपन में बाबा के घर में आ गया, 15 साल की उम्र थी, स्कूल में पढ़ रहे थे, बाबा ने ही पढ़ाया, बाबा ने ही योग्य बनाया, बाबा ने ही पालना की, और अभी तक ही इतनी उम्र हो गई तभी भी स्टूडेंट लाइफ है। मैं टीचर नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन बाबा का स्टूडेंट हूँ। और हर क्षेत्र में हर बच्चे को बाबा ने इतनी ऊंची नॉलेज दी है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है, अगर उसकी गहराई से स्टडी करे तो एक बड़े से बड़ा वो साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। जहां तक विज्ञान नहीं पहुंच पाई, वहां बाबा के योगी बच्चे सेकंड में पहुंचते हैं, बिना खर्चे के, बिना पेट्रोल के। ऐसा ऊंचा विज्ञान, ऐसा ऊंचा इतिहास, भूगोल, सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का संपूर्ण ज्ञान उस ज्ञान दाता के द्वारा हम सबको मिला है। कितने नाज की बात है, अगर इतिहास हम अपना पढ़ते हैं तो अभी तक 2500 साल का यही इतिहास मौजूद है, उसके पहले का इतिहास क्या था, कैसा था, किसी को भी पता नहीं है। हम सब 5000 वर्ष के पूरे सृष्टि चक्र के इतिहास को जानते हैं, किसने कितना समय कब कैसे राज्य किया, उस समय का भूगोल क्या था, सृष्टि पर प्रकृति क्या थी, कैसी थी, एक एक बात कितना विस्तार से हम सबको बाबा ने पढ़ाया है, फुल बनाया। कहता है मैं नॉलेज फुल हूँ और बच्चों को मास्टर नॉलेज फुल बनाता हूँ। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, अथॉरिटी बाबा ने दी है, ये बाबा की पालना और पढ़ाई का प्रैक्टिकल प्रमाण है। बाबा के छोटे छोटे बच्चे, अभी हम लोगों ने गुजरात के अंदर अभियान निकाला था, शाश्वत योगिक खेती अभियान, सुना होगा आप सबने नाम, अधिकतर गुजरात के भाई बहन यहाँ बैठे हैं। वंडरफुल बात थी कि बड़े बड़े कृषि अधिकारी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, हमारी छोटी छोटी बहनों के द्वारा योग द्वारा कैसे खेती की जाए, खेती में क्या क्या यूज किया जाए, उनके प्रवचन सुनकर के ऐसे देखते थे कि किस यूनिवर्सिटी पर से पढ़ के आए हैं। बहुत छोटी छोटी बहनें उनको योग के द्वारा खेती करने की विधि सिखाती थी। जब संसार की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, प्रकृति तमोप्रधान बन चुकी है, पांचों तत्वों की हलचल है, किसान किसी कारण से यदि वो खेती करता है, मेहनत करता है, अच्छी फसल मिलती है तो भी उसको पैसा नहीं मिलता, और नहीं मिलती है तो भी गरीब रहता है। तो जब प्रकृति के तत्वों में इतनी हलचल हो रही है, विकारों का फुल फोर्स है, तमो प्रधानता ने चारों ओर अपने पांव फैला दिए हैं, हर क्षेत्र में अति का माहौल बनता जा रहा है, ऐसे समय में बाबा की पालना प्राप्त किए हुए बच्चे हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा। पालना का सबूत है हम सबकी श्रेष्ठ स्थितियां, क्योंकि अंतकाल में अति के वातावरण में कोई भी कार्य, कोई भी चीज काम में आने वाली नहीं है। बाबा की पालना जिसके फलश्रुति, फलस्वरूप हमारी जीवन, हमारी विचारधाराएं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ और महान बनी है, ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं जो श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो कर रही हैं, पालन कर रही हैं, जो मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर, मर्यादा की रेखा के अंदर रहती हैं, वो सुरक्षित रह सकती हैं, सेफ्टी का अनुभव कर सकती हैं। हम सबके लिए बाबा ने क्या क्या श्रीमत दी है, मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली को उस रीति से सुनते होंगे कि बाबा की ये मुरली केवल मुरली नहीं है लेकिन एक श्रेष्ठ मत है। हर कर्म की मत, सवेरे से रात तक की दिनचर्या जो बनी है, आंख खुलते आंख बंद, सोते बंद होते सुबह से रात्रि तक के लिए, हर श्वास संकल्प, हर समय के लिए, हर कर्म के लिए बाबा ने श्रेष्ठ मत दी है। ऐसा कोई भी बाप या टीचर नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा जो एक एक बात के लिए बारीकी से, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, श्रेष्ठ कर्मों की कला सिखा दी। ये पालना बाबा की हम सबको मिली है। सवेरे आंख खुले पहले नंबर में, सबसे पहले संकल्प में बाबा से गुड मॉर्निंग करो, आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग किया तो दिन गुड हो जाएगा। कितनी सुंदर श्रीमत है, एक एक बात पर हम विचार करते हैं संक्षिप्त रूप में थोड़े समय में। मैं एक बहुत बड़े विषय की ओर आपको ले जाऊंगा, क्योंकि दो बातें हैं पालना के लिए, शिक्षाएं जिसको हम श्रीमत के रूप में लेंगे, और मर्यादाएं। एक और बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो हर कर्म के लिए है, थोड़ा सा उस पर गौर करके देखें। आत्मा का सबसे स्नेही, सबसे हर समय साथ रहने वाला शरीर है, तन। बाबा ने इसके विषय में हर बात की श्रीमत दी है, तन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तन आपके लिए कैसे मंदिर है, तन के माध्यम से, अच्छे शरीर के माध्यम से आत्मा कैसे अच्छे कार्य कर सकती है, यज्ञ सेवाएं कर सकती है, तन को तंदुरुस्त बनाने के लिए हर प्रकार की बाबा ने हमको विटामिन्स दी हैं। केवल दवाइयों के आधार से नहीं, डॉक्टरों के आधार से नहीं, लेकिन कैसे बैलेंस से चला जाए वो संतुलन बना करके सिखाया है। तुम्हारा खान पान कैसा हो, आहार विहार कैसा हो, तुम्हारी नींद कैसी हो, कितनी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो, तुम्हारा संग कैसा हो, आप सभी थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करें। सब बातों की श्रीमद् बाबा की मुरली से मिल रही है। तन जो एक आत्मा के रहने का मंदिर है, इसकी सफाई, इसकी स्वच्छता, इसको समय पर भोजन, समय पर विश्राम, मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना, डॉक्टर्स नहीं बदलते रहना जरूरी है। दवा भी लो, लेकिन दुआएं दवा से अधिक काम करती हैं। इसी मत दी है बाबा ने, सिर्फ दवाओं पर आधारित नहीं रहो, लेकिन दुआएं बहुत मदद करती हैं, समय पर साथ देती हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर कोई भी शरीर का कर्म हो, कोई भी हिसाब किताब किसी के सामने कभी भी आता है, आ सकता है, लेकिन उस हिसाब किताब को देख करके सुस्त नहीं बनो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बिस्तर पर नहीं लेट जाओ, सामना करके समर्थ हो करके उसको स्वस्थ बनाने की कला सीख करके जल्दी से ठीक हो करके फिर से सेवा में लग जाओ। ये भी अंदर की मन की दृष्टि, मन का स्वास्थ्य तन को ठीक कर देगा। तन की बीमारियों के साथ अगर किसी का मन बीमार हो गया तो कोई डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है। इसलिए मन सदा निरोगी रहे, मन सदा मन मनाभाव रहे, मन में कभी व्यर्थ चिंतन ना आए, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये बीमारी आ गई, अब क्या होगा, बाबा ने उसके लिए भी श्रीमत दी है, बच्चे इसका चिंतन नहीं करो, ये भी व्यर्थ चिंतन है। बहुत खुशी खुशी से बाबा की याद में, बाबा के स्नेह में समाते हुए कर्म भोग को सूली से कांटा बना दो। कितनी सुंदर श्रीमत बाबा ने तन को स्वस्थ रखने के लिए दी है। ये नहीं कहा तुम प्राणायाम चढ़ाओ, तुम कोई हठ योग करो, ठीक है शरीर की स्वास्थ्य के लिए कुछ समय जैसे हम योग अभ्यास करते हैं ऐसे थोड़ा समय एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन सारा समय ही शरीर पर ध्यान दें, शरीर पर ही सब कुछ चला जाए, पूरा उस पर ही ध्यान दे दें, आत्मा की उन्नति पर ध्यान न हो तो शरीर क्या करेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाबा ने हर प्रकार की श्रीमत दी। मन जो चंचल है, जिसके लिए बहुत कुछ गीता में भी वर्णन है, लोग भी समझते हैं, आप सभी भी कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं टिकती है, मन भटकता है, मन बहुत परेशान करता है, बहुत चंचल है, ये तो घोड़ा है। लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या श्रीमत दी, बच्चे अगर घोड़ा है तो उसकी लगाम अपने हाथ में रखो, अगर घोड़ा है तो उसको अच्छा अच्छा भोजन खिला करके उसको अपने कंट्रोल में रखो, मारो नहीं, चाबुक नहीं लगाओ, बांधो नहीं, दमन नहीं करो, लेकिन उसको सुमन बनाओ, अच्छे अच्छे विचार दो, पॉजिटिव थिंकिंग, कम से कम विचार, जो नेगेटिव बात है उसको फुल स्टॉप लगा करके पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे, समर्थ संकल्प करोगे तो ये मन आपका कहना मानने लगेगा, मन आपके लिए उड़न खटोला बन जाएगा, मन आपको यात्रा कराएगा अपने वतन की, मूल वतन, सूक्ष्म वतन की। इसलिए मन को कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं दो, बहुत अच्छे अच्छे विचार करो। कोई कुछ भी आपके लिए बोलता है, ना अनुमान लगाओ, ना शक की दृष्टि रखो, ना ईर्ष्या रखो, ना द्वेष रखो, मन निर्मल बन जाए, स्वच्छ बन जाए, इसके अंदर किसी भी प्रकार की किसी की कमियां, किसी की कमजोरियां, किसी के अवगुण नोट नहीं करो, इसको अच्छे अच्छे विचार, हर एक की विशेषताएं सुनाते सुनाते बहुत अच्छा सुखदायी बना दो। तो मन के लिए कितनी अच्छी अच्छी श्रीमत दी है। फिर धन के लिए कैसी श्रेष्ठ मत है, एक एक बच्चा बाबा का, चाहे गरीब है, चाहे कुछ भी उसके पास नहीं है, उसको भी बाबा ने श्रीमत दी, बच्चे इसको सफल करना सीखो, व्यर्थ एक कौड़ी भी नहीं जाए, ये बहुत वैल्यूबल है संगम की। जो आपके पास संपत्ति है, जो धन आपके पास है, उसको कहीं भी निष्फल नहीं जाने देना, ये संगम पर बीज है, और इस बीज को अगर श्रेष्ठ खेती में डालेंगे तो सारे कल्प के लिए आप संपत्तिवान बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। इसलिए ये इंश्योर्ड करने का समय है, बीज बोने का समय है, सफल करने का समय है। इसलिए धन कहीं पर भी व्यर्थ न जाए, ध्यान रखना। इसके लिए बहुत श्रीमत मिली हुई है, कम खर्च वाला नसीन, खर्चा कम से कम हो, संकल्प का भी खर्चा कम हो, बोल का भी खर्चा कम हो, और संपत्ति भी कम लगे और काम अच्छे से अच्छा हो, तब कहेंगे ये बाबा की श्रीमत पर चलने वाला है। अगर बहुत खर्चा कर रहा है, फिजूल खर्चे हो रहे हैं, कोई शादी आ गई, कोई ब्याह आ गया, कोई ऐसा त्योहार आ गया, बहुत हम लुटा रहे हैं पैसे को, तो बाबा कहता है श्रीमत पर नहीं है। श्रीमत पर चलने वाला बच्चा जानता है कि कैसे अपने कार्य को करते हुए धन को कैसे खर्च करना है, कमाई को कैसे बांट करके चलाना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए, आई वेल समय के लिए बैलेंस से चलना, धन को यथार्थ यूज करना और अधिक से अधिक भविष्य के लिए अपने धन को सफल करना, उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी हर मुरली में श्रीमत दी है। आप सभी नोट करेंगे कि एक एक पैसे को सफल करने की मत है। ऐसे नहीं कहा तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो तुमको पैसों से भर दो। आपके पास पैसा है, आपके अंदर दान वृत्ति के संस्कार हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन अगर भिखारी की आदतों को चेंज नहीं किया गया, गरीबों की आदतों को चेंज नहीं किया गया और उनको धन से सहयोग देते गए, तो वो आदतें उनकी बहुत बुरी होती जाएंगी, बहुत बिगड़ती जाएंगी और उसका शेयर देने वाले को भी मिलेगा। इसलिए पाप के भागी आत्माएं न बने, इसलिए बाबा ने हमारे धन को भी सदुपयोग करने की श्रीमत दी कि अगर कोई ऐसा आता है, भिखारी है, गरीब है, भूखा है, उसको आप कपड़ा दे दो, भोजन खिला दो, उसको कुछ मदद कर दो, अलग बात है, लेकिन धन अगर देंगे और जाके अगर शराब पी लेगा, सिगरेट पी लेगा या जुआ खेलेगा या सिनेमा देख लेगा, उस पैसे का दुरुपयोग होगा तो उसका हिस्सा आपको ही भोगना पड़ेगा। ये बहुत कर्मों की गहन फिलॉसफी बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ मत के रूप में दी है। आप सभी इस पर विचार करेंगे कि हर कर्म के लिए श्रीमत है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, अपने ऑफिस में जाते हो, अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हो, कौन से संकल्प लेकर के जाना, कैसे सफलता मिलेगी, एक एक बात के लिए अपने बच्चों को बाबा श्रीमत दे रहा है। श्रेष्ठ मत है, राय है, बच्चे ये करो, ऐसे करो। जब कहीं पर जाते हो, किसी कार्य से जाते हो, किसी से कार्य कराना है, तो कभी ये संकल्प नहीं करना ये तो करेगा ही नहीं। ये अगर संकल्प का बीज डाल दिया तो जरूर उसमें असफलता मिलेगी। अगर सफलता प्राप्त करनी है, किसी से भी काम कराना है, तो आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है श्रेष्ठ संकल्प की, शुभ संकल्प की, शुभ भावनाओं की, उसका प्रयोग करो कि जरूर करेगा। श्रेष्ठ कर्म है, क्यों नहीं करेगा, करके दिखेगा, जरूर होगा। अगर हम अच्छे अच्छे संकल्प कोई भी कर्म क्षेत्र पर करते हैं तो न करने वाला कर्म ही वो सामने वाला हाँ जी करके कर लेता है। प्रयोग करके देखें, ये श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति है। तो बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिली है हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने की, अगर भगवान के बच्चे संगम पर सिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे तो दूसरे कौन कर सकेंगे। सिद्धि सिद्धि नहीं है ये, लेकिन विधि से हर क्षेत्र में सिद्धि मिल सकती है और विधि माना श्रीमत। किसी भी कर्म क्षेत्र पर आप अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा ने उसकी विधि बताई है और मुरली के अंदर विधि है, कहीं ऊपर से नहीं आती, कोई बहनों के द्वारा नहीं आ रही है, लेकिन डायरेक्ट भगवान ने अपने बच्चों को ये मत दी है, बच्चे ये कर्म करते हो ऐसे करो। अगर आप कोई भी कर्म करने के लिए जा रहे हो, पहले एक सेकंड के लिए अपने मन को एकाग्र कर लो, स्थिर कर लो। एकाग्रता से स्थिरता आती है, स्थिरता से स्वच्छता आती है और स्वच्छता से स्पष्टता आ जाती है। बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है, परखने की शक्ति आ जाती है, सामने वाले व्यक्ति को परख सकते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं, कि किस लक्ष्य से आया है, इसको क्या चाहना है। इतनी एकाग्रता का अभ्यास हो जो हम हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। ये विधियां जो बाबा ने दी सुनाई हैं, ये श्रीमत है। तो तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए, क्योंकि संबंधों में हम सबके कई बार टकराव होते हैं, कई बार एक ज्ञान में चलता है दूसरा उसका विरोध करता है, कई बार ऑफिसेज में भी बहुत सामना करना पड़ता है। बाबा ने हम सबको संबंधों के लिए बहुत सुंदर मंत्र दिया है और वो मंत्र तावीज के रूप में हम सबके पास रहना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे संबंधों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखो। रिगार्ड दो, मांगो नहीं। कई लोग मांगते हैं सामने से कि ये मुझे सम्मान देना तो मैं सम्मान दूं, ये भी कुछ अच्छे शब्द बोले तो मेरे द्वारा अच्छे शब्द निकलेंगे। हम ये अपेक्षाएं लेने की न रख करके संबंधों को अगर सुधारना चाहते हैं, संबंधों को अगर स्नेही सहयोगी बनाना चाहते हैं तो उनको सम्मानजनक बोल, सम्मानजनक भावनाएं, बहुत सुंदर सम्मान से, रिस्पेक्ट से बात करना हम उनसे करें तो उसके रिटर्न में उनसे सहयोग प्राप्त हो सकता है। सिर्फ संबंधों में ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संबंधों में सुधार तभी लाया जा सकता है, उनको सहयोगी तभी बनाया जा सकता है जब हमारे जीवन में ज्ञान उतरा हुआ हो। हम गुस्सा कर रहे हैं बच्चों पर, हम हाथ चला रहे हैं और ज्ञान हम ऊंचा ऊंचा सुनाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मधुरता भरा संबंध, रिस्पेक्ट भरा संबंध अपने आप आकर्षित करेगा। इस माँ को, इस पिता को, इस भाई को कहाँ से ज्ञान मिला है, किसने इनके जीवन को सुधारा है, अपने आप वो सुनने के इच्छुक हो जाएंगे। तो बाबा हम सबको कहता है, श्रेष्ठ मत देता है बच्चे, संबंधों को अगर सुधारना है, संबंधों को सहयोगी बनाना है तो कभी भी उनसे विरोध नहीं करो, उनके आगे गुस्सा नहीं करो, उनका डिसरिगार्ड नहीं करो, उनको अपमानित नहीं करो, लेकिन उनको सम्मान देना सीखो। अपने स्वमान में रह करके दो, नीचे आकर के नहीं। स्वमान की एक बहुत ऊंची सीट है हमारी और हमको इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान बाबा ने दिए हैं। बाबा कई बार कहता है जो मेरे टाइटल है वो आप बच्चों के समान है। बाबा अगर ज्ञान का सागर है तो बाबा कहता तुम मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हो, ये तुम्हारा समान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हमको कहता तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम विजयी रतन हो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम मस्तक की मणियां हो। ये सब बाबा ने हम सबको समान दिए हैं। अगर हम समान में रह करके, किसी के मान की इच्छा नहीं है, लेकिन समान में रहते हैं और सबको सम्मान देते हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्रीमत कहती है अगर हम बाबा के बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफल हो ही नहीं सकते हैं बाबा की श्रीमत अगर यथार्थ रीति से पालन कर रहे हैं तो। मर्यादाएं हैं कर्मेंद्रियों के लिए, साठ में मैं सुनाऊंगा, आप सभी विचार करना। किसी भी एक मर्यादा का उल्लंघन दुख का अनुभव कराएगा, शोक वाटिका में ले जाएगा। सीता ने एक छोटी सी मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा को थोड़ा सा क्रॉस किया रहम के वश कि चलो भिखारी है बेचारा, कहता है बाहर आकर के तुम भिक्षा दो। आकर्षण थी, दूसरी बातें थी, वो अलग बात है, लेकिन उस समय उसने परखने की बजाय थोड़ी सी मर्यादा का उल्लंघन किया, शोक वाटिका का अनुभव करना पड़ा, अशोक वाटिका नहीं। हम सभी भी अगर किसी एक ईश्वरीय मर्यादा का मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म से उल्लंघन करेंगे तो दुख का अनुभव उसी समय होगा, सजाएं बाद में नहीं है, उसी समय योग टूट जाएगा। इसलिए बाबा ने हमारे लिए मर्यादाओं की लकीर खींच करके दी है, बच्चे तुम्हारे लिए ये मर्यादाएं हैं, मनसा के लिए मर्यादाएं हैं, वाचा के लिए मर्यादाएं हैं, कर्मणा के लिए मर्यादाएं हैं। अगर हम मनसा को वरदानी बनाना चाहते हैं तो मर्यादा है मनसा को समर्थ बना करके मनसा से दूसरी आत्माओं को शक्तियों का दान दो, दो लो नहीं, आपकी मनसा आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी मनसा आपका कहना मानने लगेगी, आप मनसा से बहुत कुछ सेवाएं कर सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन मनसा को पहले शक्तिशाली बनाओ, उसको अपने नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो, और मनसा शक्ति से कुछ समय कुछ आत्माओं को इमर्ज करके शक्ति का दान दो। आपके पास वाचा की शक्ति है, अच्छा ज्ञान सुना सकते हो, अच्छी तरह से किसी बात को स्पष्ट कर सकते हो, ज्ञान दान करो, दान से वरदान मिलेगा। अगर वरदान चाहते हैं बाबा का तो दान करना सीख लो, जितना हम देंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा। तो वाचा से जितना हम दूसरों को सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारी वाचा अच्छी होती जाती है, महावाक्य होते जाते हैं। ध्यान रहे, अधिक वाचा बहुत नुकसान करती है, अधिक बोलने से सफलता नहीं मिलती है। बाबा ने वाचा के लिए बहुत अच्छी अच्छी मुरलियां सुनाई हैं, इस बारी अनेक समय से हम सुनते आ रहे हैं, और इस बारी का विशेष इशारा है बाबा का, लास्ट मुरली 18 जनवरी की। बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे अभी शक्ति दल की जरूरत है, शक्ति दल माना ये नहीं केवल शक्तियां, लेकिन हम सभी बाबा के शिव शक्ति दल की आत्माएं श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, अपनी वाणी द्वारा और अपने श्रेष्ठ संघ के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तित करने में मदद करें। हम किसी के संघ के प्रभाव में ना आ जाएं, हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए अपने श्रेष्ठ संघ का प्रभाव अन्य आत्माओं पर डालें, संघ का रंग लगाएं, वो मुझे अपने संघ में प्रभावित कर ले, उसकी बजाय जो बाबा का संघ मुझे लगा है, श्रेष्ठ संघ में हम रहते हैं, हम अपने श्रेष्ठ संघ से उन आत्माओं को परिवर्तित कर दें। वाचा ऐसी हो, सम्मानजनक हो, आवश्यक जो बोले वो हो, कम हो, मधुर हो, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कटाक्ष वाले बोल हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए, अपमानजनक बोल नहीं निकलने चाहिए। ये मर्यादाओं की लकीर है हमारे लिए, और बाबा ने हमारी दृष्टि के लिए, हमारे दृष्टिकोण के लिए, हमारी वृत्तियों के लिए, हमारी स्मृति के लिए, हर बात के लिए मर्यादा की लकीर खींच करके दी है। वृत्तियां भी मर्यादा के बाहर न जाएं। कोई चीज देख ली, वृत्तियां चंचल हो गई, चलायमान हो गई, चाहिए का संकल्प आ गया, मुझे भी मिलना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, जहां चाहे ना आई, वृत्तियां चंचल हो गई, मर्यादा का उल्लंघन हो गया। वृत्तियां अनासक्त हो जाएं, शुभ हो जाएं, बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं। बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, तुम संतुष्ट रहना सीखो, जितना पाया है उसका चिंतन करके उसको बढ़ाओ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ, वृत्तियां आपकी बहुत स्थिर हो जाएंगी और वृत्तियों से वायुमंडल बनेगा। दृष्टि में हर आत्मा की बहुत शुभ भावना है, शुभ चिंतन है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इस जाति का है, इस जाति का है, बाबा ने उसके लिए मर्यादा खींच करके दी कि हे मेरे बच्चों, तुम देह नहीं हो, तुम्हारा दैहिक धर्म नहीं है, तुम्हारी दैहिक जाति नहीं है, तुम इन सबसे ऊपर उठो, तुम तो एक पिता के बच्चे हो, आत्मा हो, भाई भाई हो, और तुम सबका स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। इसलिए कभी भी ये ना आए कि ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है, इसका ये धर्म है, इसका ये धर्म है। बाबा ने हमें धर्म भेद से, भाषा भेद से, जाति भेद से बदल करके, ऊपर उठा करके आत्मा के सब स्वधर्म में स्थित कराया, और आत्मिक दृष्टि बना करके बहुत पवित्र दृष्टि बना दी। ये मर्यादा की लकीर खींच दी, किसी को भी देखो, चाहे जितना सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, कैसा भी हो, लेकिन आपकी वृत्ति उसके रूप पर, रंग पर, मणि पर नहीं जा सकती है। आप एक आत्मा हो, ये आत्मा है, जिसको सफल करना वो करे, नहीं करना न करे, लेकिन मैं उसके धन के पीछे लग जाऊं, मैं उसके रूप के पीछे लग जाऊं। बाबा ने हम सबको मर्यादा की लकीर बना के दी है कि कभी भी किसी भी आकर्षण में नहीं आना। इसलिए दृष्टि की मर्यादाएं, दृष्टिकोण की मर्यादाएं, वृत्तियों की मर्यादाएं और स्मृति की भी मर्यादाएं हैं, ऐसे नहीं जो आए याद करते रहो, जिसको आए याद करते रहो, इस स्मृति में भी कोई भी बीती बात का चिंतन न हो। जो बीत गया फुल स्टॉप, अच्छा बीतता है भले उसको याद कर लो, लेकिन कोई ऐसी बुरी बात हो गई है, कोई दुख की घटना हो गई है, कोई कर्म गलत हो गए हैं, बार बार उसको सोच करके दुखी नहीं हो जाओ, ड्रामा कह करके फुल स्टॉप लगा के आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीख लो। ये हम सबको बाबा ने मर्यादाएं सिखाई हैं, तो मनसा के लिए, वाचा के लिए और एक एक कर्म इंद्री के लिए, कानों से क्या सुनो, मुख से क्या बोलो, आंखों से क्या देखो, वृत्तियों में क्या रखो और हाथों से क्या करो। मैं समझता हूं कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकती है कि मुझे इसके विषय में पता नहीं है। हर एक बाबा के बच्चे को हर मर्यादा के विषय में बाबा ने बताया है। मैं तो शॉर्ट में आपको यही कहूंगा कि अगर ईश्वरीय पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें दिखाना है तो हम हर मर्यादा को नैनों से, बोल से, कर्म से, हर कर्मेंद्री से पालन करते हुए श्रीमत को अपनी एक मर्यादा की लकीर बना करके उस पर चलते चलें। हमारी प्रैक्टिकल जीवन ईश्वरीय पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। हमको बाबा ने इतनी ऊंची जीवन दी है, हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी जीवन बाबा को प्रत्यक्ष करे। कहना न पड़े हमारे पास ज्ञान है, हमको भगवान पढ़ाता है, हम कहें हमको भगवान पढ़ाता है और जाके झगड़ा करें किसी से बैर करें, किसी का अपमान करें, कौन मानेगा भगवान पढ़ाता है। अगर सचमुच हम कहते हमको भगवान पढ़ाता है तो हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। तो हम सभी को बाबा ने बहुत ऊंचाई पर रखा है और ऐसी पालना दी है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है, ऐसी शिक्षाएं दी हैं। तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, बाबा की ये शिक्षाएं, बाबा की ये पालना इस कलयुग में हम सब की रक्षा कर रही है। अगर कोई रक्षा आप नहीं करना चाहता है तो कोई भी सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा की शिक्षाओं को, मर्यादाओं को, श्रीमत को अपना सुरक्षा गार्ड बना लो। श्रेष्ठ संकल्पों के लाइट के कवच के अंदर रहना सीखो। लाइट का घेरा और कुछ नहीं है, हमारे शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र संकल्प हैं। अगर उस लाइट के घेरे में हम रहते हैं तो कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी भटकती हुई आत्मा, कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए रक्षा कवच है। तो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की पालना का अपनी प्रैक्टिकल जीवन से सच्चा सबूत दें, ऐसी हमारी भावना है। ओम शांति।